एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सालांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं।
एक ऐसी किताब जो आसान नहीं है।
बिल्कुल, डेविड फॉस्टर वॉलेस का महा उपन्यास इन्फिनिट जेस्ट अमरीकी साहित्य का एक कह सकते हैं मील का पत्थर।
हाँ, और काफी विशाल भी, 1000 पन्नों से ज्यादा ही है। सुना है, पढ़ना भी एक अलग ही अनुभव है।
सही कहा, एक अनुभव, एक चुनौती। वॉलेस मतलब डेविड फॉस्टर वॉलेस 1962-2008 वो अपने समय के बहुत ही प्रभावशाली और कुछ हटकर सोचने वाले लेखक थे। वो उस दौर में लिख रहे थे जब साहित्य में ना कटाक्ष और विडंबना मतलब आयरनी का बहुत चलन था।
हाँ, पोस्ट मॉडर्न दौर जिसे कहते हैं।
हाँ, पर वॉलेस को लगता था कि ये सब हमें असलियत से, सच्ची भावनाओं से जैसे दूर कर रहा है।
अच्छा,
तो उन्होंने एक नई ईमानदारी मतलब न्यू सिंसेरिटी की बात की कि भाई बिना किसी लाग लपेट के जिंदगी की मुश्किल सच्चाइयों पर बात हो,
जैसे
प्यार, दर्द, अकेलापन, इन सब पर।
मतलब सीधी सच्ची बात।
बिल्कुल, और उनके लिखने की शैली वो भी एकदम अलग थी।
हाँ, वो मैक्सिमलिज्म वाली बात है ना, लंबे लंबे वाक्य, ज्ञान कोश जैसी डिटेल्स।
हाँ, और वो भाषा भी कभी एकदम अकेडमिक, कभी बिल्कुल आम बोलचाल वाली, और वो एंड नोट्स, सैकड़ों एंड नोट्स
जो कहानी का ही हिस्सा है, फुटनोट्स जैसे नहीं।
सही, ये सब कोई दिखावा नहीं था। वो शायद दिखाना चाहते थे कि आज की जिंदगी कैसी है, हर तरफ से जानकारी की बौछार, दिमाग भटका हुआ।
हाँ, जो हमारी आज की हकीकत भी है काफी हद तक।
तो इन्फिनिट जेस्ट जो 1996 में आई, इसी सोच का नतीजा है। जब ये छपी थी तब लोग थोड़े हैरान भी थे, थोड़े कंफ्यूज्ड भी।
हाँ, किसी ने कहा जीनियस का काम है, किसी ने कहा भाई ये तो समझ से बाहर है।
पर आज इसे 20वीं सदी के सबसे जरूरी अमेरिकी उपन्यासों में गिना जाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस जटिल उपन्यास की कहानी, इसके किरदारों के उतार चढ़ाव और इसके गहरे मतलबों को थोड़ा समझ सके।
चलिए कोशिश करते हैं। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है?
कहानी का सेटअप भविष्य के उत्तरी अमेरिका में है। एक सुपर स्टेट है जिसका नाम है ONAN, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिकन नेशंस।
और माहौल भी कुछ अजीब सा है वहाँ का। सुना है साल गिने नहीं जाते बल्कि बेचे जाते हैं।
हाँ बिल्कुल, समय का बाजारीकरण हो गया है। साल के नाम कंपनियों के नाम पर रखे जाते हैं, जैसे ईयर ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अमेरिकन हार्टलैंड,
या फिर ईयर ऑफ द डिपेंड अडल्ट अंडरगारमेंट। मतलब गजब है,
है ना? ये दिखाता है कि कैसे हर चीज बाजार के हवाले है। कहानी का जो केंद्र है वो बॉस्टन शहर के पास दो जगह है।
अच्छा,
कौन सी? एक है एनफील्ड टेनिस अकेडमी, शॉर्ट में ETA। यहाँ देश के सबसे होनहार युवा टेनिस खिलाड़ी तैयार होते हैं। माहौल एकदम सख्त, अनुशासन वाला, जीतने का भारी दबाव,
कुलीन वर्ग की दुनिया।
और दूसरी जगह है एनेट हाउस, ड्रग एंड अल्कोहल रिकवरी हाउस। ये एक हाफ वे हाउस है। यहाँ लोग नशे की लत से जूझ रहे हैं, उभरने की कोशिश कर रहे हैं।
तो एक तरफ ऊंची उड़ान के सपने, दूसरी तरफ जमीन से जुड़े रहने का संघर्ष।
बिल्कुल विपरीत दुनियाएं।
हाँ, और इन्हीं दो दुनियाओं का टकराव, या कहिए जुड़ाव, कहानी को आगे ले जाता है।
ठीक है, और इस सब के बीच वो रहस्यमयी फिल्म की बात आती है ना, इन्फिनिट जेस्ट।
हाँ,
वही है कहानी का केंद्रीय रहस्य, इन्फिनिट जेस्ट या द एंटरटेनमेंट।
ये एक वीडियो कैसेट है, एक फिल्म,
जिसे बनाया है ETA के संस्थापक डॉक्टर जेम्स ओ इनकिंडेंजा ने, जो अब इस दुनिया में नहीं है।
बिल्कुल, और वो कोई आम फिल्म मेकर नहीं थे, अवांट-गार्डे किस्म के।
और ये कोई आम फिल्म नहीं है, कहते हैं ये इतनी इतनी ज्यादा मनोरंजक है, इतनी लुभावनी कि जो इसे देख ले वो बस
उसी में खो जाता है।
हाँ, दुनिया की किसी और चीज में कोई रुचि नहीं बचती, वो हिलना डुलना बंद कर देता है, कैटाटोनिक हो जाता है और आखिर में उसी परमानंद में, या कहें बेध्यानी में मर जाता है।
बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है, एक तरह का दिमागी नशा।
बिल्कुल, जिससे बचना नामुमकिन है। और अब इस फिल्म की जो मास्टर कॉपी है वो गायब है।
अच्छा, तो अब उसे सब ढूंढ रहे होंगे।
हाँ, कई गुट हैं जो इसके पीछे पड़े। एक तरफ है क्यूबेक के अलगाववादी ए एफ आर, जिन्हें व्हीलचेयर हथियारे भी कहते हैं।
वो क्या करना चाहते हैं इससे?
वो इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं अमेरिका का मनोबल तोड़ने के लिए।
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार की एक खुफिया एजेंसी है OUS, वो भी शायद इसे ढूंढ रही है, मुमकिन है खुद हथियार बनाने के लिए। स्टीम्पली नाम का एक किरदार इसी एजेंसी से जुड़ा लगता है।
तो ये तो एक थ्रिलर जैसा लग रहा है, फिल्म की तलाश, जासूसी, अलगामवादी।
ऊपर से देखने पर तो ऐसा ही लगता है, पर वॉलेस का असली मकसद जासूसी कहानी लिखना नहीं था। उनका सवाल बहुत गहरा है।
क्या सवाल है वो?
वो पूछ रहे हैं कि आज के दुनिया में जहां हर तरफ मनोरंजन है, भटकाव है, कामयाबी का इतना दबाव है, वहां हम असली मतलब कैसे खोजें, जिंदगी का अर्थ। ये जो अंदर ही अंदर खा जाने वाला अकेलापन है आज के जीवन में, उससे कैसे निपटें? असली चुनौती ये है कि हम अपनी जिंदगी में पूछते किसे हैं, किस चीज को सबसे ऊपर रखते हैं। मतलब क्या किसी नशे को, अपनी महत्वाकांक्षा को, किसी इंसान को, या फिर ऐसे मनोरंजन को जो बस दर्द भुलाने का वादा करता है? या फिर क्या हम दर्द को सहना सीख सकते हैं, अपने अकेलेपन से बड़ी किसी चीज से जुड़ सकते हैं? ये इस उपन्यास की आत्मा है।
गहरे सवाल है और इन सवालों से जूझते हुए किरदार होंगे फिर।
हाँ, किरदारों का तो जैसे पूरा जंजाल है इस किताब में। केंद्र में है इनकेंडेंजा परिवार,
वही जेम्स इनकेंडेंजा का परिवार।
हाँ, पिता जेम्स इनकेंडेंजा, वो जीनियस फिल्म मेकर जिनकी मौत हो चुकी है, पर उनका भूत कहानी में घूमता है। कहते हैं उन्होंने वो घातक फिल्म अपने बेटे हैल से जुड़ने की एक बहुत ही अजीब कोशिश में बनाई थी।
और उनकी मौत भी अजीब थी, माइक्रोवेव वाली बात।
हाँ, उनकी आत्महत्या माइक्रोवेव में सिर रखकर परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, एक गहरा घाव।
और बच्चे वो कैसे हैं?
माँ है एवरिल इनकेंडेंजा, वो ETA की डीन है, बहुत ताकतवर, प्यार भी करती हैं बच्चों से, पर उनका कंट्रोल कभी कभी घुटन भरा हो जाता है। सबसे बड़ा बेटा है ऑरिन, प्रोफेशनल फुटबॉलर है, पंटर। उसे रिश्तों की लत है, बहुत सारे अफेयर्स।
ये भी एक तरह की लत हुई।
हाँ, फिर है मंजला बेटा मारियो, उसे कई शारीरिक दिक्कतें हैं, पर शायद वो परिवार में सबसे ज्यादा संवेदनशील है, दूसरों का दर्द समझता है।
अच्छा।
और सबसे छोटा हैल इनकेंडेंजा, हाँ हैल, जिसके बारे में कहते हैं कि वो टेनिस का जीनियस है और उसे पूरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी याद है।
हाँ, वही हैल, बाहर से देखो तो एकदम परफेक्ट टेनिस स्टार, चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला।
खोखला मतलब?
उसे एनहेडोनिया नाम की स्थिति है, मतलब वो खुशी महसूस नहीं कर पाता। TTA का दबाव, अंदर का खालीपन, इससे बचने के लिए वो छुपके गांजे का नशा करता है सालों से।
ओहो।
और उपन्यास की शुरुआत में ही एक सीन है जो असल में कहानी के अंत के काफी करीब का है।
कौन सा सीन?
हैल एक यूनिवर्सिटी इंटरव्यू में है और वो बोल नहीं पा रहा, अजीब जानवर जैसी आवाजें निकाल रहा है, उसका शरीर ऐंठ रहा है, जैसे वो अपनी ही दिमाग में फंस गया हो।
ये तो बहुत दुखद है, मतलब बुद्धि और कामयाबी भी उसे बचा नहीं पाए।
बिल्कुल, वो इसी बात का प्रतीक है।
ये तो हुई टेनिस एकेडमी की दुनिया। अब एनेट हाउस की तरफ चलें, वहां कौन है मुख्य किरदार?
वहां डॉन गैटली बहुत अहम किरदार है, शायद उपन्यास का नैतिक केंद्र भी कह सकते हैं उसे।
अच्छा, वो क्या करता है?
वो पहले चोर था, खतरनाक नशों का आदी, अब एनेट हाउस में काम करता है, रिकवरी में मदद करता है। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पर उसने जिंदगी को, नशे की सच्चाई को बहुत करीब से देखा है। एल्कोहलिक्स एनोनिमस यानी AA के जो सीधे साधे सिद्धांत है ना,
हाँ,
उनमें उसे गहरी समझ मिली है। उसकी यात्रा धीरज की यात्रा है।
और सुना है उसे गोली भी लगती है?
हाँ, और जब उसे गोली लगती है तो वो दर्द की दवा लेने से मना कर देता है।
क्यों?
दर्द तो बहुत होता होगा, उसे डर है कि कहीं वो फिर से नशे की गिरफ्त में ना आ जाए। वो उस भयानक दर्द को सहता है। ये दिखाता है कि असली हिम्मत दर्द से भागने में नहीं, उसे झेलने में है, उसका सामना करने में है। वो सहानुभूति और सेवा का प्रतीक है।
कमाल का किरदार लगता है। और जोएल वैनडाइन, वो एक्ट्रेस?
हाँ, जोएल, जिसे कभी PGOAT द प्रीटीएस्ट गर्ल ऑफ ऑल टाइम कहा जाता था,
अब तक की सबसे खूबसूरत लड़की।
हाँ, वो जेम्स इनकेंडेंजा की फिल्म द एंटरटेनमेंट की स्टार थी, उसकी प्रेमिका भी, लेकिन वो अपनी खूबसूरती और अतीत के बोझ से भाग रही थी।
और उसके साथ कोई हादसा हुआ था, एसिड अटैक जैसा?
हाँ, एक एसिड से उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया। ये शायद खुदकुशी की कोशिश भी हो सकती है, साफ नहीं है। अब वो हमेशा घूंघट में रहती है।
ओहो।
और क्रैक कोकिन की आदि होकर आखिर में एनेट हाउस पहुंचती है। उसकी कहानी दिखाती कि बाहरी सुंदरता कैसे एक जाल बन सकती है, और क्योंकि वो एंटरटेनमेंट की स्टार थी तो वो भी उसे ढूंढने वालों के निशाने पर आ जाती है। गैटली के साथ भी उसकी कुछ अजीब सी मुलाकातें होती हैं।
और फिर वो जासूस और अलगाववादी भी तो हैं।
हाँ, AFR वाले, व्हीलचेयर हत्यारे, और उनमें है रेमी मराथे जो व्हीलचेयर पर है और शायद डबल या ट्रिपल एजेंट है,
और दूसरी तरफ वो अमेरिकी एजेंट स्टीपली जो अक्सर औरत का भेस बदलती है।
हाँ, ह्यू हेलन स्टीपली। मराथे और स्टीपली के बीच जो बातचीत होती है ना, वो बहुत दार्शनिक है।
किस बारे में?
आजादी, पसंद, खुशी, देशभक्ति, इन सब बड़े मुद्दों पर वो बहस करते हैं। तो ये सारे किरदार हैं और इनकी कहानियां एक साथ चलती हैं, पर सीधी रेखा में नहीं।
तो कहानी सीधी नहीं है, ये तो पाठक के लिए मुश्किल होता होगा।
हाँ, मुश्किल तो है, पर वॉलेस ने ये जानबूझकर किया है। किताब सीधी कहानी नहीं सुनाती, ये टुकड़ों में बटी है, समय में आगे पीछे जाती है, अलग अलग किरदारों के नजरिए बदलती रहती है।
क्यों, ऐसा क्यों किया उन्होंने?
शायद आज की जिंदगी की नकल करने के लिए। जैसे हमारा ध्यान बटा रहता है, हर तरफ से जानकारी आती रहती है, वैसे ही वॉलेस चाहते हैं कि पाठक एक्टिव रहे, मेहनत करें, इन टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करें।
तो इसे समझने के लिए क्या करना होगा, कोई तरीका है?
हाँ, मोटे तौर पर तीन मुख्य धागे हैं जिन्हें हम पकड़ सकते हैं।
अच्छा, कौन से है वो?
पहला भागा है ETA यानी टेनिस अकेडमी का। इसमें हम हैल का अंदरूनी संघर्ष देखते हैं, जीतने का दबाव, उसका नशे का इस्तेमाल, भावनाओं से उसका कट जाना। ये धागा वहीं खत्म होता है जहां उपन्यास शुरू होता है, हैल का वो इंटरव्यू वाला पतन।
ठीक है, दूसरा धागा?
दूसरा है एनेट हाउस का। ये नशे की लत और उससे उभरने की कोशिशों की दुनिया है। यहाँ डॉन गैटली का सफर मुख्य है, उसका अतीत, उसकी वर्तमान की लड़ाई, गोली लगना, अस्पताल में दर्द सहना, AA के सिद्धांत। ये कहानी आगे बढ़ने से ज्यादा किरदार के अंदरूनी बदलाव पर फोकस करती है।
और तीसरा?
वो जासूसी वाला।
हाँ, तीसरा धागा जासूसी और आतंकवाद का है। इसमें AFR उस घातक फिल्म द एंटरटेनमेंट की तलाश में है। माराथे और स्टीपली की दार्शनिक बहसें इसी का हिस्सा हैं। ऑरिन इनकेंडेंजा से पूछताछ भी इसी में होती है, क्योंकि उसका जोएल वैन डाइन से पुराना रिश्ता था।
तो क्या ये तीनों धागे आखिर में मिल जाते हैं? क्या फिल्म मिलती है, रहस्य सुलझता है?
मिलते तो हैं, पर पूरी तरह नहीं। कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ पर खत्म होती है। कहाँ?
गैटली ETA के मैदान में कुछ खोद रहा है, शायद जेम्स इनकेंडेंजा का सिर। ऐसा लगता है जेम्स का भूत उसे बता रहा है कि कहाँ खोदना है। शायद फिल्म की कॉपी वहीं दबी है।
और फिर?
फिर कहानी अचानक खत्म हो जाती है और अंत में गैटली के नशे की लत के सबसे बुरे दिनों का, सालों पहले का एक लंबा फ्लैशबैक आता है।
मतलब कोई साफ अंत नहीं कि फिल्म मिली या नहीं, हैल का क्या हुआ, गैटली का क्या हुआ?
नहीं, कोई साफ अंत नहीं, सब कुछ अधूरा सा लगता है, और शायद यही वॉलेस चाहते थे।
क्यों?
पाठक को उलझन में छोड़ने के लिए।
शायद इसलिए ताकि पाठक खुद सोचे, खाली जगहों को खुद भरे। ये एक पहेली है जिसका हल किताब नहीं देती। शायद संदेश ये है कि जिंदगी में, और खासकर नशे से उभरने के सफर में, कोई साफ अंत नहीं होता। प्रक्रिया ही सब कुछ है, कोशिश करते रहना ही मायने रखता है।
ये तो बहुत अलग नजरिया है।
तो फिर इस उपन्यास के मुख्य विषय क्या उभर कर आते हैं? किन बड़ी बातों पर ये सोचने को मजबूर करता है?
ये है कि वो लत को सिर्फ ड्रग्स या शराब तक नहीं देखते।
तो फिर?
उनके लिए लत कुछ भी हो सकती है, हर वो चीज जिसे हम अपनी सच्चाई से, अपने दर्द से भागने के लिए इस्तेमाल करते हैं। TV, खेल में कामयाबी, सेक्स, यहाँ तक कि हर बात का मजाक उड़ाना भी एक लत हो सकती है।
अच्छा।
और वो जो घातक फिल्म है इन्फिनिट जेस्ट, वो इसी आत्मघाती आनंद, इसी निष्क्रिय खपत का सबसे बड़ा प्रतीक है। एक ऐसा मनोरंजन जो आपको पूरी तरह निगल जाए।
तो ये सवाल उठता है कि क्या हमारा मनोरंजन भी एक तरह की लत बनता जा रहा है, जिंदगी से भागने का जरिया?
बिल्कुल, ये सवाल ये किताब बहुत जोरदार तरीके से उठाती है।
और अकेलापन?
हाँ, आपने कहा था किरदार अपने में कैद लगते हैं।
हाँ, अकेलापन और एक दूसरे से जुड़ने की भारी मुश्किल, जिसे सोलिप्सिज्म कहते हैं। ज्यादातर किरदार अपने ही विचारों, अपनी ही दुनिया में फंसे हुए हैं। हेल बोल नहीं पाता, रिश्ते कामयाब नहीं होते।
वॉलेस की लिखने की शैली भी इसे दर्शाती है। वो हमें किरदारों के दिमाग के अंदर इतनी गहराई तक ले जाते हैं कि हम भी उनका अकेलापन, उनकी उलझन महसूस करने लगते हैं। उपन्यास बताता है कि दूसरों को समझना, उनसे जुड़ना कितना मुश्किल है, इसके लिए कितनी हिम्मत और कोशिश चाहिए।
कहीं कहा भी गया है शायद कि हम सब अंदर से मानते हैं कि हम दूसरों से अलग हैं।
हाँ, कुछ ऐसा ही।
ये एक विडंबना है कि हर कोई अपने इस गुप्त विश्वास में समान है कि कहीं गहरे में वे बाकी सबसे अलग हैं।
और वॉलेस नई ईमानदारी की बात करते थे, कटाक्ष के खिलाफ। वो यहाँ कैसे दिखता है?
वॉलेस को लगता था कि ये जो हर बात का मजाक उड़ाना, किसी भी चीज को गंभीरता से न लेना, ये एक तरह का बचाव का तरीका बन गया है, असली भावनाओं से बचने का।
हाँ, एक कवच जैसा।
हाँ,
वो चाहते थे कि हम मुश्किल भावनाओं का सामना करें ईमानदारी से, भले ही वो आसान ना हो। इसीलिए उपन्यास में ए के जो सीधे साधे सिद्धांत है ना, जैसे वन डे एट अ टाइम,
हाँ, एक दिन एक बार में,
वो इतने अहम हो जाते हैं। वो उस खोखले दूर खड़े होकर मजाक उड़ाने वाले रवैये का जवाब है, जैसा वॉलेस इशारा करते हैं। जैसे आजकल लोग कूल उदासीनता समझते हैं, वो असल में सच्चा इंसान होने का डर है।
और इसी से शायद दर्द और रिकवरी का विषय जुड़ता है।
बिल्कुल, आज की दुनिया हमें दर्द से भागना सिखाती है, हर तकलीफ का फौरन इलाज चाहिए। पर वॉलेस कहते हैं शायद दर्द जरूरी है विकास के लिए। गैटली का दर्द की दवा ना लेना इसलिए इतना बड़ा नैतिक कदम है। ये दर्द के बीच भी होश में रहने का चुनाव है, जिंदगी को उसकी सच्चाई को झेलने का चुनाव। रिकवरी कोई एक दिन में होने वाला जादू नहीं, ये रोज की लड़ाई है।
हाँ, वो कहावत है ना, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी,
लेकिन तब तक नहीं जब तक वो तुम्हारे साथ अपना काम पूरा नहीं कर लेती। ये बात यहाँ बहुत सटीक बैठती है।
और आजादी का क्या?
वो मारा थे और स्टिपली की बहसों में इसका जिक्र था। हाँ, वो बहस करते हैं कि सच्ची आजादी है क्या, क्या ये बस मनचाहा करने की छूट है, या सच्ची आजादी किसी चीज से खुद को जोड़ने में है, किसी समुदाय से, किसी सिद्धांत से, किसी ऊंची ताकत से।
तो उपन्यास किस तरफ इशारा करता है?
इशारा ये है कि शायद खुद को किसी बड़ी चीज के लिए समर्पित करने में, प्रतिबद्ध होने में ही असली आजादी है। बेलगाम इच्छाएं तो कैद हैं।
संक्षेप में, कुछ और विषय भी हैं शायद, जिसे परफेक्ट बनने की कीमत।
हाँ, ईटीए और जेम्स इनकिंटेजा दिखाते हैं कि कैसे पूर्णता की तलाश इंसानियत को खत्म कर सकती है, और राष्ट्रीय पहचान और जिम्मेदारी का मुद्दा भी है। ONN, वो प्रदूषित बंजर जमीन जिसे ग्रेट कॉन्केविटी कहा गया है, ये सब अमेरिका के अपने कचरे, शाब्दिक और मनोवैज्ञानिक, से इनकार और उसे बाहर फेंकने की प्रवृत्ति दिखाते हैं।
वॉलेस की शैली पर थोड़ी और बात करते हैं। वो लंबे वाक्य, ढेर सारे डिटेल्स, कहानी का टुकड़ों में होना, ये पाठक के लिए कैसा रहता है?
देखिए, पाठक को सक्रिय रहना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है। ये निष्क्रिय होकर पढ़ने वाली किताब नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है आज की हमारी खंडित चेतना की नकल करने के लिए।
और वो एंड नोट्स, वो तो बहुत ही अजीब है, करीब 400।
हाँ, वो एंड नोट्स, वो वैकल्पिक नहीं है, कहानी का अभिन्न हिस्सा है।
कहानी पढ़ते पढ़ते बार बार पीछे पन्ने पलटना पड़ता होगा।
हाँ, और यही वॉलेस चाहते थे। ये पढ़ने के अनुभव को तोड़ता है, बाधित करता है, ठीक वैसे ही जैसे आज इंटरनेट पर हम एक लिंक से दूसरे पर भटकते रहते हैं।
अच्छा, ये तो दिलचस्प कनेक्शन है।
उन एंडनोट्स में किरदारों की पिछली कहानियां हैं, वैज्ञानिक या दार्शनिक विषयांतर हैं, यहां तक कि पूरी उप कहानियां भी हैं, जैसे किताब पढ़ते पढ़ते कोई दूसरी खिड़की खुल जाए।
और कहानी कई नजरियों से कही गई है, है ना?
हाँ, कई दृष्टिकोण हैं। कभी हम हेल के दिमाग में होते हैं, उसकी जटिल सोच में, कभी गैटली की सीधी साधी जमीनी बातें सुनते हैं, कभी कोई सर्वज्ञ सूत्रधार हमें सब कुछ बताता है। इससे दुनिया बहुत बड़ी और कई परतों वाली लगती है।
और प्रतीक, सिंबल्स भी बहुत होंगे इसमें।
हाँ बिल्कुल, वो एंटरटेनमेंट फिल्म खुद एक बड़ा प्रतीक है, निष्क्रिय खपत का, खतरनाक आनंद का। टेनिस कोर्ट जिंदगी का रूपक है, अनुशासन, नियम, संघर्ष, खासकर अपने अंदर के प्रतिद्वंदी से लड़ाई।
और जोएल का घूंघट,
वो शर्म का, छुपाव का, और शायद बाहरी सुंदरता के बोझ से बचने की इच्छा का प्रतीक है। और वो ग्रेट कॉन्केविटी, अमेरिका और कनाडा के बीच की वो प्रदूषित बंजर भूमि, वो अमेरिका की इनकार की प्रवृत्ति का प्रतीक है, अपने कचरे को दूसरों पर डालने की आदत का।
भाषा भी तो अलग है, कभी बहुत कठिन, कभी एकदम आम।
हाँ, अकादमिक और बोलचाल की भाषा का मिश्रण है, गहरा व्यंग्य है, डार्क कॉमेडी है, शब्दों का दोहराव है, ये सब मिलकर एक बहुत ही अनूठा अनुभव रचते हैं।
तो कुल मिलाकर इसे पढ़ना कैसा अनुभव है? क्या ये सिर्फ मुश्किल और निराशाजनक है?
मुश्किल जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, ये एक मांगलिक पाठ है, लेकिन निराशाजनक नहीं। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको पूरी तरह अपने में खींच लेता है।
आप किरदारों के साथ जुड़ जाते हैं।
हाँ, आप उनकी बोरियत महसूस करते हैं, उनकी घबराहट, उनके अकेलेपन का गहरा दर्द, रिकवरी की वो धीमी दर्दनाक रफ्तार, सब कुछ। इसमें हंसाने वाले पल भी बहुत हैं, और ऐसे पल जो दिल को बिल्कुल चीर देते हैं।
बोलिस की सहानुभूति की बात भी कही जाती है।
हाँ, वो अपने किसी भी किरदार को जज नहीं करते, चाहे वो कितना भी टूटा हुआ हो, कितना भी उलझा हुआ। वो बस उनके अंदर की सच्चाई को पूरी ईमानदारी और कह सकते हैं गंदगी के साथ सामने रखने की कोशिश करते हैं।
तो किताब पढ़ने के बाद क्या असर रहता है, क्या कुछ बदलता है?
मुझे लगता है हाँ, आप शायद अपने आसपास के लोगों के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा होगा, उनके छिपे हुए संघर्ष क्या होंगे। आप अपनी जिंदगी में उन चीजों को पहचानने लगते हैं जो आपका ध्यान भटकाती हैं, आपको सुन करती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, काम का नशा हो या कुछ और।
और क्योंकि अंत खुला हुआ है।
हाँ, तो ये आपको सोचने पर मजबूर करता रहता है, मेरे लिए मनोरंजन का क्या मतलब है, मेरी अपनी लतें क्या हैं, मैं अपनी जिंदगी में और दूसरों के लिए ज्यादा उपस्थित कैसे हो सकता हूँ। किताब सीधे जवाब नहीं देती, पर सवाल बहुत गहरे उठाती है।
तो शायद नजरिया बदल जाता है सार्थक जीवन को देखने का।
हाँ, शायद आप ये समझने लगते हैं कि सार्थक जीवन सिर्फ बड़ी उपलब्धियों या लगातार खुशी पाने में नहीं है, बल्कि होश में रहकर, हिम्मत और दया के साथ जिंदगी को झेलने में है। हल्की वो अंदरूनी चीख याद रह जाती है, मैं यहाँ अंदर हूँ और मैं बाहर नहीं निकल सकता। ये उस अकेलेपन की इंतहा है।
तो ये उपन्यास हमें आज की जिंदगी की उलझनों, हमारे अकेलेपन और मनोरंजन के इस माया जाल पर वाकई गहराई से सोचने को मजबूर करता है। ये एक आईने की तरह है जो हमें दिखाता है कि हम कैसे जी रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, और ये एक उम्मीद भी जगाता है कि इस भटकाव और शोर के बीच भी शायद सच्चा इंसानी जुड़ाव और जिंदगी का मतलब ढूंढना मुमकिन है। रास्ता मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। ये अंधेरे में भी रोशनी की एक महीन सी किरण जैसा है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।